मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। फ्रेंड्स, मुख्य विषय के तहत हम लोग जो भी सोचने पर विचार करने पर जो बातें कर रहे हैं उस पर ही मैं कुछ और तथ्य आप सबके सामने रखना चाहूंगा, लेकिन आइए पहले कुछ दूसरी छोटी मोटी खबरें हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं। मैंने कल हिंदुस्तान अखबार का आप लोगों को एक एडिटोरियल प्रोवाइड किया था, तारों बिना रात, थोड़ा सा साहित्यिक किस्म का टाइटल है तारों बिना रात। मुझे विश्वास है कि ये एडिटोरियल आप लोगों ने पढ़ा होगा, और पढ़ने के बाद जब हम प्रदूषण की बात करते हैं तो उसमें उस लिस्ट में आपको एक और प्रदूषण जुड़ने को कुछ न कुछ मिल गया होगा, और वह है प्रकाश प्रदूषण। प्रकाश प्रदूषण यदा कदा कभी कभार छुटपुट तौर पर इसके बारे में बातें होती हैं, लेकिन अगर एडिटोरियल लिखा जा रहा है तो इसका मतलब है कि अब यह प्रदूषण भी धीरे धीरे बातचीत में स्थान हासिल करने लगा है। प्रकाश प्रदूषण, इसीलिए शीर्षक दिया गया है तारों बिना रात, क्योंकि प्रकाश जो आर्टिफिशियल जो लाइट है वो इतनी ज्यादा हो गई है कि हमें तारे दिखाई ही नहीं पड़ते हैं और पूरी रात बीत जाती है। मुझे गांव का अपना जीवन याद आता है कि जब हम लोग बाहर सोया करते थे गर्मी के दिनों में, तो वो आकाश कितना तारों से भरा हुआ, ऐसा लगता था जैसे कि किसी ने तारे जड़ दिए हों आकाश पर, जैसे साड़ियों में चांदी जड़ी जाती है, सितारे जड़े जाते हैं। इतना खूबसूरत लगता था आकाश, और अब शहरों में आप आकाश को देखिए तो तारे दिखाई नहीं देंगे। सच पूछे तो आकाश भी कहां साफ साफ दिखाई देता है। इस पूरे के पूरे एडिटोरियल में एक बड़ा ही फिलोसॉफिकल सेंटेंस है जो मैं खासकर आपका जो फोर्थ पेपर होता है एथिक्स का उसके संदर्भ में बताना चाहूंगा कि जब प्रकाश बहुत ज्यादा होता है तो हमें चीजें स्पष्ट नजर नहीं आती, और ये बिल्कुल सही है। देखिए कि जब आपके आंख पर बहुत तेज रोशनी डाली जाए तो आंखें चौंधिया जाती हैं, कहां सामने का कुछ भी दिखाई नहीं देता, और यहां तक कि जब बहुत ज्यादा प्रकाश डाला जाए तब भी आपको वो चीज समझ में तो आ जाएगी कि ये किताब है, ये गमला है और ये फलाना फलाना है, लेकिन उसका सही रंग क्या है आपके समझ में नहीं आएगा, उसका सरफेस कैसा, धरातल चिकना है, ऊबड़ खाबड़ है, वो सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी। यानी कि जो प्रकाश की अधिकता है वो हमें सत्य से अलग कर देती है, और ये जीवन के सभी क्षेत्रों में होता है। जब हम इमोशनली बहुत चार्ज्ड हो जाते हैं तो चीजों को सही तरीके से नहीं समझ पाते हैं। यहां इमोशनली बहुत अधिक चार्ज हो जाने का संबंध आप बहुत अधिक प्रकाश से जोड़ सकते हैं। हमारे पॉलिटिकल लीडर्स भी यही करते हैं, जब चुनाव में वोट मांगना होता है तो आप देखिए किस तरह के बहुत ज्यादा वायदे कर रहे हैं, लोग बिल्कुल इमोशनली चार्ज्ड हो जा रहे हैं और वोट दे देते हैं, दूसरों को लोग इसी तरह से भ्रम में डालते हैं। तो यानी कि इस वैज्ञानिक सिद्धांत का प्रयोग आप जीवन के संदर्भ में भी कर सकते हैं, खासकर इसी बात को मुझे यहां स्पष्ट करना था इस एडिटोरियल के माध्यम से। यहां मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि अभी एक दो दिन से मुझे एक दो मेल मिले हैं और उसमें यह कहा गया है कि मैंने कुछ एडिटोरियल कमेंट्स प्रोवाइड किए या आर्टिकल प्रोवाइड किए और उनके बारे में अपने डेली ऑडियो लेक्चर में चर्चा करके बताया नहीं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ना चाहिए। देखिए, यहां मैं बहुत स्पष्ट कर दूं कि मैं सभी जो भी लेख और एडिटोरियल कमेंट्स आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं उसके बारे में कमेंट नहीं करता हूं कि ये इंपॉर्टेंट है इसे जरूर पढ़िए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है या कम इंपॉर्टेंट है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बताता हूं। बोलते बोलते जो मुझे ध्यान आ जाता है, जो मेरे उस समय के टॉपिक से मेल खा रहा होता है, तो मैं उसके बारे में बता देता हूं। तो प्लीज, अगर मैं किसी एडिटोरियल कमेंट से आर्टिकल के बारे में कुछ नहीं कह रहा हूं, इसका मतलब आप ये मत लगाइएगा कि यह यूं ही डाल दिया गया है। नॉट एट ऑल फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे लगा कि मुझे ये बात क्लियर कर देनी चाहिए। आज मैंने एक ब्लॉग पढ़ा, दरअसल डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जी के नाम से आप लोग अच्छे तरीके से परिचित ही हैं, वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर है, तो वो जब भी कुछ भी लिखते हैं तो वो व्हाट्सएप पर मुझे भेज देते हैं। तो आज मैंने उनका एक ब्लॉग पढ़ा और अमेरिका के बारे में था, और शीर्षक था हिंसक अमेरिका, कि अमेरिका कैसे धीरे धीरे हिंसा से लबालब होता चला जा रहा है। मतलब उन्होंने बताया है कि पिछले एक साल में अमेरिका में खासकर बंदूकबाजी और इन सब से 40,000 लोगों की मौत हुई है। अब देखते हैं ना कि बंदूक निकाला और ठाए डाए डाए मार दिया, स्कूल में यही हो रहा है, सार्वजनिक स्थानों पर यही हो रहा है। तो उन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि अमेरिका जो पूरी दुनिया में अभी खासकर डेमोक्रेसी का एक प्रतीक माना जाता है, विकास का प्रतीक माना जाता है, पूरी दुनिया के लोग अमेरिका जाकर बसना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, उन्हें लगता है कि वहां बहुत अधिक कमाई हो जाएगी, उस अमेरिका में ये क्या हो रहा है, शायद सबसे अधिक हिंसक समाज बन गया है वहां का। इतनी मौतें तो युद्ध में भी नहीं होती हैं कि एक साल में 40,000 लोग मारे जाएं। तो उसमें फिर उन्होंने बताया है कि खासकर अमेरिका के साथ प्रॉब्लम यह है कि बहुत ज्यादा वो पूंजीवादी समाज होता जा रहा है। पूंजीवादी समाज का मतलब है कि बस धन कमाओ धन कमाओ धन कमाओ, खूब खर्च करो धन कमाओ, और जब वो ऐसा नहीं कर पाते तो वो हिंसक हो जाते हैं। और जहां धन ही सब कुछ होगा वहां तो फिर बाकी नैतिकता और धर्म और सदाशयता और सहिष्णुता वो तो सब किनारे होते ही चले जाएंगे, क्योंकि धर्म के नाम पर धन ही है, या कह लीजिए धन ही धर्म है, धन ही मनुष्यता है, धन ही जीवन है, और ये पूंजीवादी समाज की विडंबना होती ही होती है। तो ये एक तथ्य मैंने आपके सामने रखा है ताकि एक फैक्ट आपकी जानकारी में हो, उसके पीछे का जो दर्शन है फिलॉसफी है वो आपकी जानकारी में हो, और आप इस जानकारी का इस्तेमाल बकायदे अपने आंसर राइटिंग में कर सकते हैं। जी हाँ, मेंस में आंसर राइटिंग में कर सकते हैं, और निबंध में तो आप कर ही सकते हैं, एथिक्स के पेपर में भी इसका इस्तेमाल बहुत अच्छे से हो सकता है, क्योंकि जो पूंजीवादी समाज होते हैं वहां एथिक्स को बचाए रखना बनाए रखना बहुत बड़ी चुनौती होती है। और अमेरिका में जो थोड़े बहुत लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपको दिखाई देती है, मैं अपने अनुभव के आधार पर यह बात कह सकता हूं, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि लॉ बहुत स्ट्रिक्ट है और पुलिस व्यवस्था बहुत कड़ी है। तो जब लोग देख ही रहे हैं किसी को अपराध करते हुए तो अपराध करने वाला थोड़ा सा हिचकता तो है, क्योंकि वो पकड़ा जाएगा, और पकड़ा जाएगा तो फिर लॉ अपना काम करेगा। अभी आपने सुना कैसे एक छोटी सी घटना घटी कि जो हमारे ब्रिटेन के अभी प्रधानमंत्री हैं वो बकायदे अपनी कार से जा रहे थे, बगल में उनका इंटरव्यू चल रहा था, तो उन्होंने अपनी सीट बेल्ट खोल दी बातचीत करने के लिए, लेकिन उनका जो वीडियो था वायरल हो गया, और कैसे बकायदे उन पर पुलिस ने चालान कर दिया कि आप ड्राइविंग कर रहे हैं, ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं या कार में बैठे हैं मुझे ठीक से ध्यान नहीं है, और आपने सीट बेल्ट खोल रखी है। तो वहां तो लॉ इतने स्ट्रिक्ट है। तो दोस्तों, ये जो छोटी छोटी घटनाएं होती हैं ये भी आपके लिए बड़े महत्व की होती हैं, जिनका इस्तेमाल आप अपने आंसर राइटिंग में कर सकते हैं, बशर्ते कि वो कला आपको आती हो। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने जबरदस्ती के उसे ठूंस दिया है। फ्रेंड्स, कुछ दिनों पहले हमारे यहाँ एक क्रूज की शुरुआत हुई है, प्रधानमंत्री जी ने उसका जलावतरण किया था, खासकर दूरदर्शन न्यूज में लगातार आपको उसके बारे में सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है कि अब क्रूज यहां पहुंच गया वहां पहुंच गया, पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं, बहुत लंबा क्रूज है ये, वाराणसी से चल करके डिब्रूगढ़ तक पहुंचेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्रूज है। इसको लेकर के मुझे लगता है कि जो हमारे यहां जलमार्ग है उस पर आपको थोड़ी सी तैयारी कर लेना चाहिए कि भारत धीरे धीरे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में, या कह लीजिए कि अपने परिवहन की व्यवस्था को बेहतर बनाने में उसकी जो लागत आती है, उस पर जो खर्च आता है उसको कम करने में, जिसे हम लॉजिस्टिक एक्सपेंसेस कहते हैं, बहुत कोशिश में लगा हुआ है, और उसमें जल मार्ग की बहुत बड़ी भूमिका है। हमारे पास आप देख रहे हैं कि कितनी नदियां हैं, लेकिन हमने अभी तक उसके जल मार्ग की जो कैपेसिटी है उसको एक्सप्लोर नहीं किया, एक्सप्लॉयटेशन करने की तो बात दूर की बात है, अब उसकी शुरुआत हो गई है। जगह जगह नए बंदरगाह बनाए जा रहे हैं, जो पुराने बंदरगाह हैं उन्हें ठीक किया जा रहा है, ठीक वैसे जैसे एयरपोर्ट के मामले में किया जा रहा है। तो खासकर जो जल मार्ग है, मुझे लगता है कि इस साल के मेंस के लिए एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक तो हो गया है, तो प्लीज इसे भी आप तैयार कर लें। अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर। सबसे पहले तो मैं आज फिर से आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा, अगर कल मैंने नहीं दिया है तो, कि इस विषय पर आप लोग इतनी रुचि दिखा रहे हैं। मैंने जब इस विषय की शुरुआत की थी तो मैं बहुत ही ज्यादा संदेह से ग्रसित था, मुझे लगता था कि आप लोग इसे आउटराइट रिजेक्ट कर देंगे कि सर कोई विषय बताइए, कोई कोर्स की बात बताइए, कोई टॉपिक बताइए, ये क्या फालतू की चीज आप बताने लगे। लेकिन कल तो मैं दंग रह गया जब मेरी उम्मीद से 100 गुना ज्यादा मेल मुझे इस पर मिले, और मेल भी केवल ये नहीं कि अच्छा लग रहा है, खराब लग रहा है, बेकार लग रहा है, बल्कि विचार प्रधान मेल मिले। आप लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं डिस्कस की हैं, अपनी अपनी ताकतें भी डिस्कस की हैं, यहां तक कि हमारे जो ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने अपने परिवर्तनों के बारे में बताया है कि वो किस तरीके के परिवर्तन महसूस कर रहे हैं, कहां कहां उनकी और बाधाएं आ रही हैं। और बहुत से स्टूडेंट ने तो बकायदे पॉइंट वाइज लिख करके भेजे हैं कि जब मैं विचार करता हूं तो मेरे सामने ये प्रॉब्लम्स आती हैं, मेरे लिए कितना अच्छा मार्गदर्शन का काम करेंगे आपके द्वारा लिखे गए ये मेल, सोच करके देखिए। और सच पूछिए तो मैं 8 साल से अधिक हो गए, शायद ये 9वां साल हो जाएगा मार्च में, जब से मैं डेली ऑडियो लेक्चर दे रहा हूं, तो पहली बार मुझे इस बात पर भरोसा हुआ है कि नहीं, कुछ स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं जो सही बातों को सही तरीके से स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं, और ये आप लोगों ने प्रूव कर दिया। तो इसके लिए एक बार फिर से मैं आप सबके प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और आप सबका अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं। दोस्तों मान करके चलिए कि अगर किसी भी विषय पर आप में स्वयं सोचने और समझने की क्षमता नहीं है तो मेंस क्वालिफाई नहीं कर सकेंगे, यहां तक कि प्री को भी क्वालिफाई करना थोड़ा संदेहास्पद तो हो जाए। अब हम नया कहां कुछ सोच सकते हैं, वो हमारी क्षमता भले ही न हो, दूसरों ने ही सोच रखा है, लेकिन उनके सोचे हुए को तो हम सोचें और सोचने के बाद उन्हें अपने ढंग से लिखकर आने की क्षमता तो हमारे अंदर हो, और हम उन्हीं के सोचे हुए को सोच रहे हैं लेकिन जब हम उसे उत्तर में ढाल रहे हैं तो हमारा बन जाता है। मेरे एक सीनियर थे फ्रैंक नरोना जी, वो कहा करते थे यू डोंट कोट द सोर्स यू आर ओरिजिनल। आप सोर्स मत बताइए कि आपने ये कहां से लिया है, आप ओरिजिनल हैं। एग्जामिनर इस बात को जानता है कि 21 साल से आपको अनुमति दे दी गई है कि आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में बैठे हैं और आप हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में मेंस में पहुंच जाए, तो आपकी उम्र 22 साल तक होगी मुझ ज्यादा ज्यादा। तो ऐसी स्थिति में एग्जामिनर आपसे कितनी ओरिजिनलिटी की उम्मीद करेगा, वो केवल यही देखना चाह रहा है कि आपने जो कुछ भी पढ़ा है, जो कुछ भी सुना है, लिखा है, उस पर आपने थोड़ा बहुत विचार किया है, उन विचारों को अपने विचारों में ढाल लिया है और अब आप उसका कॉकटेल अच्छे तरीके से बना करके अच्छी भाषा में आप उन्हें परोस रहे हैं, उसके लिए इतना ही पर्याप्त होता है। इसीलिए जब मैं कहता हूं कि आप विचार करें सोचें, तो आप इस द्वंद में मत पड़िए कि मैं तो एकदम नया तो सोच ही नहीं पा रहा हूं, वो आगे की स्टेज आएगी। हो सकता है कि आप जब 30-35 साल की उम्र को पार कर जाए तो वो स्टेज आ जाए, लेकिन वो आएगी तो तभी ना जब यात्रा की शुरुआत होगी। तो अभी आप यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि कुछ जो मेल्स मुझे हैं उनमें मुझे इस तरह का द्वंद दिखाई दे रहा है, तो इसे आप करेक्ट कर लें कि आप बिल्कुल नया नहीं सोच सकेंगे, उसके लिए कोशिश मत कीजिए, लेकिन कुछ तो बात बने, कुछ तो लिख पाए, कुछ तो कह पाए, यहां तक तो आप कम से कम पहुंचने की स्थिति में हो। बस मैं जिस सोचने की बात कह रहा हूं दोस्तों वो केवल यही है। आगे हम लोग इस विषय पर और बातें करते रहेंगे, आप लोग मेल्स लिखते रहिए, अपने जो अनुभव हैं, अपनी जो समस्याएं हैं मुझे बताते रहें, डेफिनेटली मेरी कोशिश होगी कि उन सब का मैं समाहार करने का प्रयास करूं। तो आज मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं, अमरनाथ चौधरी, रवीना रे खपुरा बिहार से, अंजलि सोनी सीधी मध्य प्रदेश से, हरिओम मथुरा उत्तर प्रदेश से, आकाश चौहान नांदेड़ महाराष्ट्र से, अनंत चौहान और सूरज कुमार सेमापुर बिहार से, आप सबका बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ ही दोस्तों आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।